आज फिर से एक बार जो है एल सेल्वाडोर के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस उठाए हैं। ये एक रिपोर्ट आई थी द सिटीजंस लैब की, और ये रिपोर्ट तैयार की गई थी जो ओटावा का सॉरी जो कनाडा का यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है उसके साथ मिलके, इनका जो मंक स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स है उसने ये रिपोर्ट पूरी तैयार की थी। और बड़े लंबी उन्होंने कहा जी ये जो इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस है इसको इनको भी बेचा गया है, हालांकि इनके कोई ह्यूमन राइट्स के जो वो थे नंबर्स कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इसराइल ने इनको भी बेचा, यानी इसराइल की वही जो कंपनी थी उससे इन्होंने भी खरीदा जो कि ऑथराइज्ड नहीं होना चाहिए था। इन्होंने एक्टिविस्ट जितने थे और जर्नलिस्ट थे उनके फोन्स को हैक किया और फिर जो है उनको सजाएं दी, और सेवरल जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो कि खासतौर पर गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठे कर रहे थे उनको पकड़ा, मारा, पीटा, उनके ऊपर तशद्दद किए। तो उन्होंने आज जो कहा है कि भाई ये जो है ये चीज बहुत ज्यादा ये जो है इजरायली स्पाईवेयर पेगासस ये फैलता जा रहा है तो इसके ऊपर जरा रोक लगाने की जरूरत है। ब्लूमबर्ग की जनाब आज एक रिपोर्ट है, और टेस्ला की आपको पता ना वो गाड़ी जो होती थी वो जो सेल्फ ड्राइव कार है वो क्या करती है कि वो जब रेड लाइट है ना तो उसके पास जाके वो खड़ी हो जाती है, लेकिन आहिस्ता हो जाती है, खड़ी नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करती रहती है, और वो देखती है, वो सेंस करती है कि अगर उस चौक के ऊपर चार पांच चारों तरफ से अगर गाड़ियां नहीं आ रही तो वो रेड लाइट पे रुकती नहीं है, वो चलती जाती है, वो सेल्फ ड्राइव कार
सेंसर है उसका,
हाँ सेंसर है उसका, ऐसा वो देख लेती है, सेंस कर लेती है कि आसपास कोई ट्रैफिक नहीं है तो इट कीप्स ऑन मूविंग, रेड लाइट को भी जंप करती है जो कि अदरवाइज जो है वो एक क्राइम है, यानी अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपके आसपास कोई नहीं भी है तो भी आपने रेड लाइट पे रुकना है। तो इसका जो वो फेडरल रेगुलेटर्स थे अमेरिका के अंदर वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर आवाज उठा रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। तो अब इन्होंने रिकॉल की हैं तकरीबन 53,000 कार जो हैं 2016 से 2022 तक, मॉडल एस, मॉडल एक्स और 2017-22 तक, मॉडल 3, 2020-22 की मॉडल वाई व्हीकल्स जो हैं ये सारी इन्होंने रिकॉल की हैं क्योंकि जाहिर है कि ये वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट्स है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी अब हम इसको करेंगे, फिक्स भी करेंगे, और जो ओनर्स जिनके पास इस साल की ये मॉडल की गाड़ियां हैं उनको भी हम नोटिफाई करेंगे कि वो हमको दें, हम उसको जो है फिर अब मॉडिफाई करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब आज एक बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली खबर है और इसके अंदर जो है फिर से खुलासे किए गए हैं ट्रंप साहब के बारे में। अच्छा जी 2020 का ये जो इलेक्शन हो रहा था तो इसके बारे में फिर से आज न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है और वो कहती है कि ट्रंप साहब ने इनके जो लॉयर थे रूडी जुलियानी साहब उनको कहा था कि आप फाइंड आउट करो कि ये जो वोटिंग मशीन्स हैं इनको क्या हम सीज कर सकते हैं, होमलैंड डिपार्टमेंट से आप ये पूछो। और इसके अलावा इन्होंने जो अटॉर्नी जनरल थे विलियम बार उनको भी कहा था कि क्या आप इलेक्शन का जो लॉस है इसको ओवरटर्न कर सकते हैं। बाय द वे विलियम बार साहब ने इसको ना किया था कि ऐसी मेरे से बात की। तो ये अब जबकि रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की आई है तो लोगों की आंखें बड़ी खुल गई हैं। लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि होमलैंड सिक्योरिटी को जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इस तरह का भी कोई हुक्म दे सकता है। तो ये कैसे है, विच मीन्स कि ये जो रिटायर्ड आर्मी कर्नल थे जिनका के नाम फिल वॉल्ड्रन था, फिल वॉल्ड्रन जो हमेशा से कहते आ रहे थे कि ये जो आइडिया है फेडरल एजेंसीज का ये कॉन्फिस्केट करने का और ये जो इररेगुलरिटीज इन्होंने ट्रंप साहब ने की हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। तो ये जो बेचारे थे फिल वॉल्ड्रन साहब जो थे इनकी बात पे कोई गौर ही नहीं कर रहा था। तो आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स की सारी रिपोर्ट अब सामने आई है कि एक्चुअली इन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की है जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ नहीं है, क्योंकि होमलैंड सिक्योरिटी जो है उसका ये काम ही नहीं है कि वो बैलेट बॉक्सेस उठाए और रिजल्ट्स चेंज करे और ये करे। तो मतलब ये जिस तरह होता है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो तो उसकी उस जैसी रस्म कहीं अमेरिका में ना पड़ जाए तो उससे लोग डर गए आज।
हाँ तो वो जो मशीन के थ्रू जो काउंटिंग वगैरह होती है ना तो उसके अंदर कंप्यूटराइज्ड है वो पूरी, उसको इलेक्ट्रॉनिकली वो चेंज करने के चक्कर में।
जी 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 तो आप वो यानी के पॉलिटिकली इंजीनियरिंग आप उसके अंदर कर सकते थे रिजल्ट्स को। तो वो वही तो वो कह रहे हैं कि ये तो भाई बड़ी खतरनाक प्रैक्टिस शुरू हो सकती है अमेरिका के अंदर,
सही।
क्योंकि हम तो बड़े फेयर और फ्री इलेक्शंस कराते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो ये कैसे है? तो मतलब इसमें और जो है ट्रंप साहब की खूबसूरतियां कुछ सामने आई हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज ग्रीस के अंदर एथेंस में एक पता नहीं एक दुनिया में वेव चली हुई है कि जो जर्नलिस्ट जो है गवर्नमेंट की करप्शन को सामने लाने की कोशिश करता है या जो एक्टिविस्ट जो है गवर्नमेंट की खराब पॉलिसियों के बारे में बात करते हैं उनको मारने का रुझान जो है काफी बढ़ गया है। तो आज इस तरह का एक वाकया जो है एथेंस में हुआ है, एक जर्नलिस्ट है उनके और एक उनके वहां पे यूनियनिस्ट थे जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट बात कर रहे थे, तो उनके घरों के बाहर जो हैं दो बॉम्ब फाड़े गए हैं। ये जो इनकी न्यूज एजेंसी है अमना, उसने आज जो है ये रिपोर्ट किया है और इन्होंने कहा जी कि ये जो फुटेज मिली है पुलिस को उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ हुडेड किस्म के जो लोग हैं, कुछ फिगर्स हैं, वो उधर जाके वो ये एक्सप्लोजिव डिवाइसेस कुकिंग गैस कैनिस्टर्स में लगा रहे हैं, यानी कि होममेड जो है ये, तो वो जाके वहां पे लगा रहे हैं और इन्होंने फाड़ी हैं। और जिस वक्त ये बाय द टाइम ये बाहर आए, यानी बच गए ये दोनों बाहर आए, तो वो फट चुके थे दोनों, तो उस बॉम्ब की बल्कि आवाज से ही जो थे ये उठ के जो हैं बाहर आए हैं। तो अब ये फिर से कहा जा रहा है दुनिया में कि भाई जर्नलिस्ट जो हैं और ये जो एक्टिविस्ट हैं, ये यानी अगर कोई गवर्नमेंट की खराब पॉलिसी पे बात कर रहा है तो भाई आप उसको मारने का ये कौन सा तरीका है? तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी
लास्ट ईयर भी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किलिंग जर्नलिस्ट हुई थी।
हाँ जी जी बिल्कुल, तो वो उसी के ऊपर जो है अब फिर से हो रहा है। एक्सियन जो न्यूज एजेंसी है, एक्सियोस जो न्यूज एजेंसी है उसने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज दी है और उसके मुताबिक कतर जो है उसकी फिर से डील जो है तालिबान के साथ हो चुकी है। और ये डील क्या है? ये डील वही है कि जी वो लोग जो अभी तक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते, यानी फंसे हुए वो लोग जो कि फॉरेन कंपनीज एजेंसीज मिशंस के लिए काम करते थे और वो वहां पे अब नहीं रहना चाहते हैं, उनको इवैक्यूएट जो है वो किया जा सकता है। ये जो एक इंटरव्यू ये जो है एक्सियोस जो न्यूज एजेंसी है ले रही थी कतारी फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी का, और उसमें इन्होंने इनको बताया है कि हाँ हम दो चार्टर्ड कतार एयरवेज के फ्लाइट्स जो हैं पर वीक अब चलाएंगे और वो सब लोग जो वहां पे स्ट्रैंडेड रह गए हैं वो अब जो है वहां से निकल के आ सकते हैं और जहां भी जाना चाहते हैं दुनिया के, आएगी तो ये फ्लाइट कतर में, जाहिर है काबुल से कतर चलेगी, कतर से फिर आगे वो जहां पे भी जाना चाहते हैं वो फिर जा सकेंगे। तो ये जनाब काफी अच्छी खबर है। इन्होंने कहा जी के बल्कि इन्होंने तो इंटरव्यू में ये भी कहा है कि एक फ्लाइट जो थी वो January 26 को चली भी थी, तो अब देखेंगे कितने लोगों को आने देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की आज एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक जो साइबर सेल है मुंबई पुलिस का उसने आज एक FIR लिखी है और वो ये FIR उनको लिखवाई है जो इनकी जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है राणा अयूब, उन्होंने कहा है, राणा अयूब साहब ने कहा है कि मुझे 26,000 ऑब्जेक्शनेबल एंड अब्यूसिव मुझे जो हैं वो मैसेजेस आए हैं मेरे ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं दूसरे, और उनके अंदर डेथ और रेप के भी थ्रेट्स हैं। उसकी वजह यह है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट ये लिखती हैं और उसके लिए जाहिर है कुछ दिल जले होंगे और उसके ऊपर इन्होंने कहा है और झूठी खबरें इनके बारे में लिखी गई हैं उन अकाउंट्स में। और उन्होंने कहा जी कि जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने तो इनके ऊपर बैन लगा दिया है और इनको जो है इनकी तो कोई राइटिंग्स को इतना पसंद नहीं किया जाता और ये तो खला है और ये है और वो है और इसको मारने की बहुत सारे लोगों ने धमकियां दी हैं और कि तुम बाहर निकलो तो तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। तो इन्होंने फिर जाके मुंबई पुलिस को वो सारी जो है ईमेल्स अपनी दिखाई, सॉरी वो सारे मैसेजेस दिखाए और उसके ऊपर फिर आज जो है मुंबई पुलिस ने आज 4 अनआइडेंटिफाइड जो लोग हैं उनके खिलाफ FIR काटी हैं। तो अब देखेंगे कि अब आने वाले दिनों, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि तुम जो है टेरर सिंपथाइजर हो, तो वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अब देखेंगे इनके खिलाफ क्या होगा। अल जजीरा की जनाब आज एक रिपोर्ट है और अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कुछ इंटरव्यूज लिए हैं जो इंडियन कोई इकोनॉमिस्ट हैं उनसे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने 37.7 ट्रिलियन रुपीज का एक जो है इंडियन रुपीज का उन्होंने आज बजट पेश किया है और इसके ऊपर जो है इकोनॉमिस्ट जो है उनका क्या कहना है। अच्छा जी, ये इन्होंने इंटरव्यू लिया अल जजीरा ने मदन सबनाविस के ऊपर, चीफ इकोनॉमिस्ट एट बैंक ऑफ बड़ौदा हैं। उन्होंने कहा हां जी चीजें तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा कुछ नजर आ रहा है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी बड़े रोडें, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े ये वो सब कुछ है, लेकिन गरीब के लिए क्या है इसके अंदर, वो कुछ नजर नहीं आ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी कोई जो है ज्यादा इंसेंटिव्स इसमें नहीं है। इसके अलावा जी उन्होंने बात की दविंदर पंत से, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एट इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। उन्होंने भी कहा है जी कि ये जो इलाके हमारे मुल्क के अंदर स्ट्रगलिंग इलाके थे, जो कि सेक्टर्स यानी के और जो वीक सेक्टर्स थे, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हमारा ये कंसर्न है कि इंडिया हमेशा से ये कहता है कि हम हिंदुस्तान की हालत अच्छी करेंगे तो सड़कें रोडें ब्रिज बनाने से गरीब का क्या होएगा उससे पता नहीं चल रहा है। और लेकिन जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने जनाब कहा है कि हमारे मुल्क में जो ग्रोथ आएगी 9.2% से जो है ग्रो करेगा, और वाहिद दुनिया का मुल्क होएगा हिंदुस्तान के जहां पे इस रेट से जो है ग्रोथ आएगी, तो कोई हमारा मुकाबला जो है नहीं कर सकता। द प्रिंट की आज एक स्टोरी है, एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय शुभम बत्रा, और इसकी जो हेडलाइन है दैट इज हाउ मोदी गवर्नमेंट हैज गिवन लीगल सैंक्शन टू क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया थ्रू द बैक डोर। ये हेडलाइन है आर्टिकल का। अच्छा जी, इसके अंदर अब क्या है, इसका भी आर्टिकल का जो सिनेरियो और बैकग्राउंड है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है बजट की उसके ऊपर है। वो कहते हैं जी कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स थे और जो आरबीआई का जो था और जो थी ये इवन सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स आई थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो करेंसीज में नहीं हो सकती हैं, इनको बैन किया जाए क्योंकि ये ठीक तरीका नहीं है और एक वैक्यूम है एक जो लीगल स्ट्रक्चर है उसके अंदर, तो उसका शायद लोग जो है वो फायदा उठा सकते हैं। और आरबीआई ने इनको बार किया था रेगुलर एंटिटीज को कि आप इस तरह के इसमें नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं जी कि अब ये जो नया बजट आया है ये इतना बड़ा, इसके अंदर अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू की जाएंगी, लेकिन कुछ लोगों का इसमें कहना था कि ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इससे बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री जो है उसको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दूसरे जो बैंक्स हैं वो इस पे खुश नहीं है तो फिर हमें बिजनेस अभी क्रिप्टो करेंसी में नहीं करना चाहिए। तो ये इस स्टोरी का जी है। पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं जी, उन्होंने आज मुझे लगता है बहुत अरसे के बाद सेनेट का उन्होंने जो है वो सेशन जो है अटेंड किया, हाँ दौरा किया, ये बाहर के दौरों पे ही होते हैं ज्यादा, तो बहरहाल आज इन्होंने दौरा किया। तो आज जनाब इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया है अपोजिशन लीडर जो थे सेनेट के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब को, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो हैं वहां पे हाउस में खड़े होके कि ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं इनके ऊपर आप ज्यादा बिलीव ना करें क्योंकि ये जो हैं ज्यादा रिलायबल नहीं हैं और ये कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर हैं और ये सेल आउट हैं। अब ये तो आपने बड़े खुले लफ्जों में कह दिए भाई साहब, तो ये तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि कोई आपके बारे में शायद ऐसा कह सकता है क्योंकि आप तो कभी किसी और पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर थे हैं जी, अब आप पीटीआई के हैं, तो आपने जनाब बड़ी वो बहरहाल जी इन्होंने जी बड़े एलिगेशंस लगाए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब पे, तो अब जाहिर है कि कल जब हाउस का सेशन होएगा तो फिर पता चलेगा क्या
जवाब आएगा,
जवाब आएगा। यस जी यस। अच्छा जी, फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के अंदर आसिम इफ्तिखार अहमद, उन्होंने आज फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की तरफ से एक जो है जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का जो आरएसएस बीजेपी और आरआरएस की ये जो गठबंधन है इसमें जो ये लोग बयान देते हैं वो इंतहाई डिलूजनल और प्रोवोकेटिव हैं। अच्छा जी, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि बीजेपी के एक जो हैं वो हैं लॉ मेकर और इनका नाम है कपिल पाटिल। कपिल पाटिल ने थोड़े दिन पहले एक स्पीच करते हुए कहा था कि जल्द ही आजाद जम्मू और कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे और ये कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग उम्मीद रखें क्योंकि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा है कि आप अपने मसले पे मसाइल जो आपके अपने खुद के मुल्क में हैं उनके ऊपर आप गौर करो और उन आप चूंकि मुल्क में क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो उनसे नजर हटाने के लिए आप पाकिस्तान के ऊपर ऐसी बातें मत करो और पाकिस्तान को ड्रैग भी मत किया करो अपने इलेक्शन के जब आपके ये जो दिन आ जाते हैं तो उसके अंदर, तो आपकी आदत है, आप हैबिचुअल हैं कि आपके जब मुल्क में इलेक्शन आते हैं तो आप पाकिस्तान को इनके अंदर ड्रैग करते हैं। मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एसद उमर साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ी अच्छी एक अनाउंसमेंट की है और इन्होंने कहा है कि चूंकि मुल्क के अंदर फिफ्थ वेव आ गई है तो इसलिए अब हम कल से 2 वीक लॉन्ग होम वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिसके के अंडर ये जो वैक्सीनेशन टीम्स हैं ये घर घर जाएंगी उन एरियाज में जहां पे के अभी तक भी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, और तकरीबन 35 मिलियन लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। तो इन्होंने, हाँ बड़ी बात है, इन्होंने कहा जी, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कर रहे थे जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ एंड डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनके साथ उन्होंने कहा जी एनसीओसी ने जो है तकरीबन 55,000 मोबाइल टीम्स बनाई हैं जो कि उन मुल्क के हर उस इलाके में जाएंगी जहां पे के लो वैक्सीनेशन रेट है, क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां वैक्सीनेशन होती है वहां पे जो माइल्ड लोगों के सिम्टम्स आते हैं और काफी प्रोटेक्शन भी मिलती है बहुत सारे एरियाज में। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अब घर घर जाके अगर ये कामयाब रही तो फिर हम इसी तरह 2 वीक्स की कैंपेन ये मुल्क में चलाते रहें। अच्छा जी लाहौर, मैंने कहा ना अगर आपने बचना है बच्चिंदा लो में आ गया तो लाहौर हाईकोर्ट आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, लाहौर हाईकोर्ट को है जी। अच्छा जी, ये एक पटिशन जो थी वो हमारी जो है मलका जो वो है कंट्रोवर्सी मीरा ने एक डाली थी, और उसमें उसने कहा था कि ये एक साहब हैं जिनके अतीकुर रहमान साहब, इनके साथ इनकी कुछ अरसा पहले शादी हुई थी, तस्वीरें आई थी, लेकिन मीरा का कहना था कि ये अतीकुर रहमान ही जो बिजनेसमैन है लाहौर का, इसने मुझे डिच करने की कोशिश की है और झूठा निकाह नामा वैसे भी इसने बनाया था, तो ये जो है मेरी जो जायदाद और मेरे जो घर बार और ये सारी चीजें हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है, तो आप इसको जो है सजा दें। तो इससे पहले भी जो कोर्ट थी उसने कहा था कि नहीं, जो अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हम इनका साथ देंगे, आप झूठ बोल रही हैं तो ये सही नहीं। हालांकि ये बेचारी बहुत रोती रही कि नहीं ये झूठा निकानामा है मेरी कोई शायद, वो कहते हैं जी आपकी तस्वीरें भी हैं और वो सारा कुछ है। यही एग्जैक्टली आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो है मजहर हुसैन, उन्होंने कहा है कि नहीं आपकी ये जो प्ली है ये मैं डिसमिस कर रहा हूं, क्योंकि अतीकुर रहमान ने हमको बताया है कि आपकी शादी उनके साथ हुई थी। तो बस जी एक और
अब आपको शादी करनी पड़ेगी,
अब आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। वो कहती है नहीं ये अच्छा आदमी नहीं है मुझे नहीं, उन्होंने कहा ये दूसरी बात है कि अगर आप इसके साथ नहीं रहना, लेकिन ये बात आप ना करो कि आपका निकाह नहीं इसके साथ हुआ था, ये निकाह ना। वो कहती है नहीं ये झूठा निकाह ना मैं, वो कहती है भाई तस्वीरें सारे दुनिया में आपकी फैली हुई है तो ये झूठा कैसे है, हैं मजद भाई लॉर हाईकोर्ट
सही कहा ना उन्होंने
लेकिन साथ तो दिया ना उसका,
प्रूफ तो है ना,
मीरा तो भड़की हुई है ना क्योंकि उन्होंने अतीकुर रहमान का
क्या कह सकती है कि वो ये फोटोज भी गलत है,
बस अब ये तो है ना, अब तो मीरा है ना, वो कुछ भी कह सकती है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, जैकी श्रॉफ, जिनको जैकी श्रॉफ से प्यार है, जिसको के आम जुबान में जगू दादा लोग कहते हैं, हाँ जी, वो 65 ईयर्स के माशाल्लाह हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन, यस ही इज 65 एंड स्टिल अप एंड रनिंग है जी। तो इनके आज जितने भी फैंस थे और फैमिली थी उन्होंने बड़े प्यार की इनको चिट्ठियां और खत और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे बड़े मैसेजेस दिए, लेकिन इनका जो बेटा है टाइगर की सबसे प्यारी जो है पोस्ट है वो कहता है हैप्पी 18th बर्थडे, हैप्पी 18th बर्थडे उसने बाप को कहा, टू द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विद द बेस्ट हेल्थ, और वो कहता है कि आई होप आई कैन मेक यू एज प्राउड एज यू हैव मेड अस एंड माई हैशटैग अल्टीमेट हीरो। तो ये जी उन्होंने आज अपने फादर को कहा है। और जनाब जो हंक ऑफ बॉलीवुड ऋतिक रोशन साहब आजकल एक नई हसीना के साथ देखे जा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट से निकले पकड़े गए, पेपराजी तो आपको पता ना छेड़ते नहीं है इनके पीछे पीछे फिरते हैं इन लोगों के। तो ये एक रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, एक इनके साथ हसीना थी, इन्होंने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, वो बैठी, ये भी बैठे, इन्होंने फिर हाथ लाया पेपराजी को और चले गए। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या चाकूर है ये, लड़की कौन है? तो जब जरा ज्यादा थोड़ी वो की गई तो पता चला कि ये लड़की है सबा आजाद, जो एक दो फिल्मों में आ भी चुकी है, और जो है इससे भी कुछ जब सवाल पूछा गया जर्नलिस्टों ने तो इन्होंने कुछ अपने रोमांस का कुछ बताया नहीं ऋतिक रोशन साहब के साथ, हैं जी। तो ये चाकू है, तो ये है नहीं, पहले वो आपको पता है ना वो जो आ गई थी एक वो स्पेनिश लड़की आ गई थी, तो बस अब वो मुझे लगता है फुर चक्कर हो गई है, वो चली गई है स्पेन, तो अब जो है ये इनके साथ शायद इनका चेकअप चल सकते हैं, शायद शायद। और जनाब फॉर्मूला वन रेसेस के अंदर भी नए रूल्स आ गए हैं जब से ये बदबख्तियां हुई हैं हमारे नोवाक जोकोविच के साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसमें अब जी F1 ने भी कहा है कि जो कोई भी पैडॉक के अंदर होएगा, यानी वो जो इलाका जहां पे के ये गाड़ियां जो हैं जिनके के व्हील शील चेंज होते हैं, इंजन में वो ठीक भी करते हैं, वहां पे मीडिया भी खड़ा होता है, वहां पे डॉक्टर्स भी होते हैं इनके और बहुत सारा स्टाफ होता है, तो वो कहते हैं जी कि इस इलाके में जो जो कोई खड़ा होएगा तो उस सबको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, इवन टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स एंड एवरीबडी। और वो कह रहे हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी भी बहुत बड़ा कोई आ जाएगा ना उस एरिया में तो उसका भी वैक्सीनेशन होना जो है वो जरूरी है, और अगर वो नहीं होएगा तो फिर इस इलाके के अंदर उसको नहीं आने देंगे। इवन FIA वाले जो के वहां पे और ऑर्गेनाइजर्स और वो सारे जो ये रेसें करवाते हैं उनका भी वैक्सीनेशन होना जरूरी है। एंड जनाब आज बड़ी प्यारी एक स्टोरी थी रॉयटर्स के ऊपर, एंड दिस स्टोरी वाज अबाउट पाकिस्तान की जो कैप्टन है बिस्मा मारूफ, 30 ईयर्स उनकी एज है, तो उसके बारे में थी। अच्छा ये क्या हुआ था, रॉयटर्स ने आज जो इनका इंटरव्यू लिया है वो इसलिए कि इन्होंने कुछ अरसा पहले जो था वो कहा था कि भई कोई तकरीबन 13 मंथ्स बैक कुछ कहा था कि भई अब मेरा बच्चा होने वाला है तो आई वुड लाइक टू स्टे विद माई चाइल्ड, और मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिकेट खेल सकूंगी तो मैं क्रिकेट को खुदा हाफिज कह रही हूं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन पता चला PCB ने अनाउंस किया कि नो शी इज बैक एंड शी इज बैक एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स टीम। तो आज रॉयटर्स ने इनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने पूछा कि भई आप बताएं हुआ क्या है। वो कहती है जी कि असल में बात यह है कि क्रिकेट तो मेरा वैसे भी फर्स्ट लव था, लेकिन जब बच्चा हुआ तो मुझे लगा कि मैं नहीं खेल सकूंगी, तो मैंने कहा कि वैसे भी मेरी एज 30 ईयर्स हो गई है तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकूंगी, लेकिन मेरी मां ने कहा कि भई मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख सकती हूं, यू शुड नॉट किल योर ड्रीम्स। एंड कहती है सबसे बड़ी बात यह मेरे हस्बैंड उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं अगर ये तुम्हारा ड्रीम है ये तुम्हारा पैशन है तुम खेलो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां फिर और बहुत सारी लड़कियों को इस मुल्क में इंस्पायर करेंगी। तो शादी होने का मतलब ये, वो कहती थी मुझे लगता था शादी होने का मतलब है एंड हो गई अब मेरी लाइफ, लेकिन मेरी जो है मां ने भी और मेरे जो मियां साहब हैं उन्होंने मुझे काफी वो किया है, तो नाउ शी इज प्रिपेयरिंग एंड शी वाज सेइंग कि मैं अब बहुत ज्यादा जो है वो हार्ड ट्रेनिंग कर रही हूं, और पाकिस्तान का एक ओपनर मैच होने वाला है अगेंस्ट इंडिया एट माउंट मोंगनुई, तो वहां पे वो कह रही है कि उस मैच के लिए अब मैं बहुत ज्यादा तैयारी कर रही हूं, और मैं सोचती हूं कि हम ये मैच कभी भी हम इस तरह का जीते नहीं है इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है जो लड़कियों की है जो फीमेल टीम है, वो कहती है कि मैं अब बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूं ट्रेनिंग कर रही हूं कि मैं अब जो है अच्छे परफॉर्म करूं कैप्टन रहूं और क्रिकेट खेल दूं।
वेरी गुड न्यूज
माज भाई बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। आपको पता है हमने ये खबर यहां पर बताई नहीं है, लेकिन आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियां जो हैं वो अब जो है आइस हॉकी के अंदर आ रही हैं, एंड दे आर सो माशाल्लाह स्टाउट एंड इतनी स्ट्रांग है वो, तो लड़कियों की अच्छी न्यूजें आ रही हैं, न्यूजें बड़ी अच्छी न्यूजें आ रही हैं
स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान
जी तो वो कर रही हैं और इस तरह के काफी काम कर रही हैं, और एक तो आपके सामने बैठी हुई है ना, बहुत
क्या
बात है ना माजिद भाई, कितना कोई जो है मैं काम कर रही हूं जी, देखें आप जरा गुड न्यूज है।
ये थी आज की खबरें,
ये थी जी आज की हमारी खबरें,
ये थी हमारी आज की खबरें, बकिया की खबरें इंशाल्लाह ताला फिर कल हम इसी वक्त आपके साथ होंगे, और शादी जी थैंक यू सो मच,
थैंक यू माजिद भाई, थैंक यू वेरी मच।
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA, तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेलीटाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मज़ीद तफ़सीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
तुम घर क्यों नहीं खरीदते?
मेरे लिए आज की मार्केट में घर खरीदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
मैं भी ऐसे ही सोचता था, मगर रॉयल कैनेडियन रियल्टी के जस्टिन जेम्स ने सब कुछ आसान और मुमकिन बना दिया, और देखो आज मेरा घर है।
जस्टिन जेम्स को कैसे कॉन्टेक्ट करूँ?
रॉयल कैनेडियन रियल्टी के जस्टिन जेम्स 647-688-6931 647-688-6931।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
जी साहब नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। एंड साहब, आज हम 6:45 तक इंशाल्लाह ताला आज से हम आपके साथ होंगे 6:45 तक। 5:30 जो है आप सुन सकेंगे मगरिब की अजान। एंड बस अभी आपको मैं ले चलूंगा अपने रेगुलर प्रोग्रामिंग की जानेब, एंड वहां से फिर मगरिब की अजान सुन सकेंगे आप 5:30। चलते चलते गुजारिश है, चलते चलते आप हमेशा आपसे करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा कि अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें। हम आपके लिए दुआगो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खास तौर से हमारे दोस्त, हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और वो तमाम जो इस दुनिया को रुख्सत करके जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दराजात को बुलंद करें, उन्हें जल्द फिरदौस में कदम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बशर्त जिंदगी, इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
उम्र काटूं बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में। मजा आ जाए मौला, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से। जीऊं मैं तेरी खातिर, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ। तू अपना गम अता कर, दिल बदल दे। सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, सहल फरमा मुसलसल याद अपनी। खुदाया रहम फरमा, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता। रहूँ क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा, दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है। बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला। बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा, दिल बदल दे। दिले मगमूम को मसरूर कर दे, دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، مائے وحدت پلا مخمور کر دے، مائے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
سامعین کرام، ٹورانٹو گرد و نواح کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا، تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ 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 یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے فلک جیسے چومے زمین مدینہ تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے فدا تجھ پہ میں خاک کے شہر مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ احد کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ
آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا ریڈیو 770 AM ہمارے پروگرام کو ٹورنٹو میں سننے کے لیے ڈائل کیجیے 647-872-4900 مونٹریال 514-907-6288 اس کے علاوہ کیلگری وینکوور ایڈمنٹن اور ریجائنا کے نمبرز آپ eawaz.com کی ویب سائٹ پر جا کے حاصل کر سکتے ہیں ہماری لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com لائک کریں فیس بک پیج eawaz ڈاؤن لوڈ کریں فری eawaz آفیشیل ایپ Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
Karam mangta hu, ata mangta hu. Ilahi, main tujhse dua. صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا الہی میں تو
تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
جو بھٹکے ہیں ان کو ہدایت عطا کر، جو مظلوم ہیں ان کو طاقت عطا کر،
میں سب پہ کرم ایک سا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
یہ نفرت کی آگ نہ گلشن جلا دے، جو اس آگ کو میرے مولا بجھا دے،
میں ایسے کرم کی ہوا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
وہ برباد گھر جو اجاڑے گئے ہیں، وہ گلشن بھرے جو جلائے گئے ہیں،
میں ان پہ کرم کی گھٹا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
میری صداقت کے گہنے،
صدا ان پہ سایہ تیرا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birach Broadcasting Corporation. and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप, रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
Okay. तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। ना तुम मुझे सताओ,
मैं तुमको समझ जाओ, तुम मुझको समझ जाओ।
ना मैं तुम्हें सताऊ, ना तुम मुझे सताओ,
मैं तुमको समझ जाओ, तुम मुझको समझ जाओ।
चाहत ही पूजा हो, मन मंदिर हो जान मन,
दूजे के बिन एक पल भी लगता नहीं वो मन।
फिर तो जीवन बन जाएगा प्यार का तराना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना,
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना।
प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना।
मुझे चाहती।